أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين قال الله تعالى في القرآن الحكيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ناظرین محترم, آج سب کو نور الٰہی ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا, نہ فقط مبعوث کیا لیکن بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فوقیت دی. جس طرح انبیاء میں فوقیت دی گئی ہے بعض کو بعض پر, اسی طرح بعض ایام کو بعض ایام پر فوقیت دی گئی ہے. اور ان ایام میں سے ایک دن جو ہے وہ یوم عرفہ ہے. یہ وہ دن ہے کہ جو خدا کی معرفت حاصل کرنے کا دن ہے. اور جب ہم ائمہ طاہرہ علیہ السلام کی زندگی کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر دعاؤں کے طریقے سے, دعاؤں کے توسل سے لکائے الہی کی منزل تک پہنچنے کے لیے ہدایات ملتی ہیں. اور ان دعاؤں میں سے ایک خاص دعا جو اسی عرفہ کے دن کے ساتھ مخصوص ہے, دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس دعا کو عرفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آخر اسے یوم عرفہ سے کیا نسبت ہے؟ اور اس دعا میں کون سے مضامین استعمال ہوئے ہیں, امام حسین علیہ السلام نے نقل کیے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ہم نے قم المقدس کے ممتاز عالم دین حجت الاسلام والمسلمین قبلہ نوید حسین مطہری کو دعوت دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہماری اصلاح اور تربیت کے لیے نکالا. ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس سوال سے کرنا چاہیں گے کہ چونکہ ہمارا موضوع بھی دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام ہے, تو دعا کو عرفہ سے یعنی عرفہ کے دن سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے اور عرفہ کا کیا معنی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. سب سے پہلے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک فرصت عنایت ہوئی کہ ہم اس دعا کے سلسلے میں کچھ گفتگو کر سکیں. امام حسین علیہ السلام کی یہ دعا جس کو دعائے عرفہ کہا جاتا ہے, کہ عرفہ سے اس کو کیوں تعبیر کیا جاتا ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ یہ دعا روز عرفہ سے منسوب ہے, اور روایات کے اندر اپنے احادیث کی کتب کے اندر یہ دعا امام حسین سے نقل ہے اور امام حسین کی طرف اس کو نسبت دی جاتی ہے. اس کے مضامین اتنے عالی ہیں کہ سند کی بررسی اور تحریر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, گرچہ ہمارے حدیثی کتب کے اندر مختلف معتبر کتابوں کے اندر یہ دعا منقول ہے, نقل ہوئی ہے, اور سند کے حوالے سے بھی اگر کچھ مشکل بھی ہو تب بھی اصلاً جو اس کا محتوی ہے, جو اس کا مضمون ہے, وہ اس قدر عالی ہے کہ سند کی تھوڑی سی مشکل بھی یہاں پر ہمارے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ پیدا نہیں کرتی. اور جیسے آپ نے کہا کہ ہم اس دعا کو عرفہ سے کیوں تعبیر کرتے ہیں, تو اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ مکے سے کچھ فاصلے پر عرفات ایک علاقے کا نام ہے, اور حج پہ جو لوگ جاتے ہیں ان حاجیوں کے جو مناسک اور اعمال ہیں, ان مناسک اور اعمال میں سے ایک عمل نو ذی الحج کو عرفات کے اس میدان میں حاضر ہونا ہے کہ ظہر سے لے کے وہ مغرب تک عرفات کے اس صحرا میں, عرفات کے اس میدان میں رہتے ہیں تاکہ وہ خداوند متعال سے مناجات کریں, خدا سے دعا مانگیں, اور احرام کے بعد کا یہ عمل ہے. تو اسی نو ذی الحج کو کیونکہ حج کے اس عمل کے تناسب سے عرفہ کا نام دیا جاتا ہے, کہ جس کو آپ نے بھی بیان کیا کہ روز عرفہ ہے, یہ عرفہ کا دن ہے, اس حج کے مناسک میں سے اس عمل کے اعتبار سے اس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے,
اس مکان کے اعتبار سے.
جی بالکل. فقہی اعتبار سے بھی اگر ہم اس کو بیان کریں تو فقہی اصطلاح کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ جو عمل ہے حاجیوں کا عرفات کے صحرا میں آنا اور مناجات اور دعا کے سلسلے میں, اسی کو وقوف سے تعبیر کیا جاتا ہے, یعنی ظہر سے مغرب تک ٹھہرنا اسی عرفات کے میدان میں. اور امام حسین علیہ السلام حج کے موقع پر جب عرفات میں موجود تھے تو آپ علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر آتے ہیں مغرب سے پہلے, اپنے اہل بیت کے ساتھ اور اپنے خاص اصحاب کے ساتھ, اور بارگاہ الہی میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے امام علیہ السلام یہ دعا تلاوت فرماتے ہیں. تو لہٰذا کیونکہ امام علیہ السلام اسی عرفہ کے دن وقوف کے اس عمل کے دوران امام علیہ السلام اس دعا کی تلاوت فرماتے ہیں, ہم اس دعا کو دعائے عرفہ سے تعبیر کرتے ہیں. और दुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है।
अच्छा, जैसा चूँकि हमारा मौजू ख़ुद दुआ अरफा है, तो हम ये सवाल करना चाहेंगे कि ख़ुद दुआ का माना क्या है और दुआ की एक हकीकत क्या है?
जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत सवाल है कि हम दुआ अरफा के सिलसिले में सबसे पहले इस मतलब को जानें कि दुआ की हकीकत क्या है, दुआ का माना क्या है, दुआ की अहमियत क्या है। तो दुआ की हकीकत के सिलसिले में अगर हम लुगत की किताबों में चले जाएँ तो दुआ का जो माना मिलता है वो पुकारना है, निदा देना है। लेकिन हकीकत में दुआ जो हम यहाँ पर मुरद बहस है हमारी, उसकी हकीकत यह है कि इंसान बारगाह खुदावंदी में आता है, इंसान बारगाह इलाही में आकर अपनी आजिज़ी का ऐलान करता है, अपनी न्याज और एहतियाज मोहताजी का ऐलान करता है। यानी इंसान ये इजहार करता है बारगाह इलाही में आकर कि मैं तेरा बंदा हूँ, मैं न्याजमंद हूँ, मैं मोहताज हूँ, मैं फ़कीर हूँ, तू गनी है, जो कुछ भी है मेरे पास वो तेरी जानिब से है, मेरा वजूद, मेरी जितनी भी चीज़ें हैं वो तुझसे हैं, जितनी भी नेमतें हैं वो तुझसे हैं, अब भी अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो तुमसे ही हासिल होनी है। तो लिज़ा इंसान बारगाह इलाही में आकर अपने इस फ़क्र का, अपनी इस आजिज़ी का इजहार करता है। तो लिहाजा हकीकत दुआ ये है, गरचे हमारे आम अजहान में यानि इंसानों के जहनों में ये बात होती है, बाज़ लोगों के अजहान में ये बात रहती है कि दुआ का मतलब हाजत मांगना है, हाजत तलब करना है, दुआ की हकीकत ये नहीं है। हाँ, दुआ की जो हकीकत है कि इंसान बारगाह इलाही में आकर बंदगी करे, मुनाजात करे, इजहार आजिज़ी करे, उसी की एक जो है वो पहलू या उसी का एक शाखा आप कह सकते हैं कि यह है कि इंसान खुदावंद मुताल से अपनी हाजत तलब करे। लेकिन हाजत मांगना, हाजत तलब करना, इसी को हम मुकम्मल माना में दुआ नहीं कह सकते कि दुआ की हकीकत ही यही है।
कुल्ली मफहूम अगर ये कहें तो
जी बिल्कुल, यानी दुआ की मुकम्मल हकीकत इसी में महदूद नहीं है, बल्कि ये उसी के पहलुओं में से एक पहलू है। तो बस दुआ किसे कहते हैं? दुआ की हकीकत ये है कि इंसान बारगाह इलाही में आए और अपना राबता ज़ाते परवरदिगार से बरकरार करे, इसी दुआ के ज़रिए और इन्हीं बयानात और मतालब के ज़रिए, इसी मुनाजात की गुफ्तगू के ज़रिए इंसान ख़ुद को मुर्तबित करे ज़ाते इलाही के, ख़ुद की आजिज़ी का इजहार करे। तो लिहाजा हाँ, उसी दौरान जब इंसान इस तरह खुदा से मुनाजात करता है और अपनी आजिज़ी का इजहार करता है, अपने फ़क्र का इजहार करता है, तो ज़ाहिर सी बात है वहीं पर इसी मुनाजात और इसी गुफ्तगू के दरमियान खुदा से कुछ तलब भी करता है। तो एक मरतबा हम सीधा चले जाते हैं खुदा से मांगने के लिए, और एक मरतबा नहीं, आइमा ने आदाब हमारे लिए बयान किए कि अगर आपने खुदा से मांगना भी है कि जिसको हम दुआ का एक पहलू कह रहे हैं, तो उसके भी आदाब हैं कि आप बारगाह इलाही में आएँ। जैसे खुद आइमा खुदा से जब मुनाजात करते हैं, और जिस तरह बिलखसूस ये दुआ अरफा जिसके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि जब इमाम अरफात के इस मैदान में आकर खुदावंद मुताल से मुनाजात करते हैं, तो कैसे मुनाजात करते हैं? सबसे पहले हमद इलाही बजा ला रहे हैं, लिहाजा हमद बजा लाने के बाद, खुदा की नेमतों का जिक्र करने के बाद, खुदा की औसाफ सिफात का बयान करने के बाद, बीच में आकर आयम अतहार पे सलावात और दुरूद पढ़ने के बाद, फिर आकर इमाम अगर कोई चीज़ खुदा ने मुताल से तलब करते हैं अपनी मानवी और मादी इस ज़िंदगी के सिलसिले में, तो वो इन तमाम मराहल के गुजरने के बाद है। और फिर जब इमाम मसलन जैसे इस दुआ के अंदर है कि इमाम इस तरह जो है इस दुआ का आगाज़ करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा लिक़ज़ाइही दाफ़े, हम्द उस ज़ात की कि जिसकी कज़ा, जिसके फ़ैसले को टालने वाली कोई ज़ात नहीं है। तो आपने देखा कि कैसे इमाम ने खुदा से मुनाजात के लिए आगे आते हैं और किस तरह हम्द से आगाज़
इब्तदा हम्द बारे ताला
बिल्कुल हम्द से आगाज़ करते हैं, और इसी तरह फिर सिफ़ात, इसी तरह फिर नेमात खुदा की वो बयान करते हैं। मसलन सिफ़ात के सिलसिले में इमाम फरमाते हैं कि हुवल जवादुल वासिअ, यानी खुदा ने मुताल की जवादियत की सिफत का तस्करा करते हैं इमाम, और वो भी कैसा जवाद के जो वासे है। और इसी तरह फिर जो है आयम अतहार पर दुरूद और सलावात की तिलावत करते हैं, फरमाते हैं कि सल्ल अला मुहम्मद व आल मुहम्मद, हम्द और दुरूद के बाद एक जगह पर आकर इमाम अलैहिस्सलाम बारगाह इलाही में ये जुमला इरशाद फरमाते हैं इसी दुआ के अंदर के वाअतनी फी हाज़िहिल अशियत अफ़ज़ल मा आतैत, इसी रात के अंदर खुदाया मुझे वो चीज़ अता कर जो तूने अपने बंदों में सबसे अफजल चीज़ इनायत की है। तो लिहाजा इमाम खुदावंद मुताल से अगर अपने मानवी हाजात की भी तलब कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि सीधे आकर मुस्तकीम आकर हमने ज़ात परवरदिगार से एक चीज़ तलब करना शुरू कर दी। नहीं, आदाब हैं दुआ के। तो बस हाजत मांगना, दुआ की हकीकत क्या है? हाजत मांगना मुकम्मल एतबार से दुआ की हकीकत नहीं है, बल्कि दुआ की हकीकत खुदा से क़ुर्ब पैदा करना, खुदा से उन्स पैदा करना, खुदा की बारगाह में आकर उससे मुर्तबित होना और अपनी आजिज़ी का इजहार करना, ये है। हाँ, इसी के लाबला में जैसे हमने दुआ अरफा के बाद इन जुमलात में देखा, हमद इलाही बजा लाते हैं, आप खुदा की नेमतों का तस्करा करते हैं, उसकी उसके गनी होने को आप जिक्र करते हैं, अपने फ़कीर होने को आप बयान करते हैं, फिर जाकर आप अपनी हाजात को तलब करते हैं। तो यहाँ से ये बात रोशन हो जाती है कि हाजत तलब करना दुआ की हकीकत का एक पहलू है, न तमाम माना।
अच्छा, जिस तरह हम दुआ अरफा का जब हम मुताला करते हैं और अक्सरन उर्फ आम में जो है ख़ुद रोज़ अरफा को ये एक अमल भी है, देखते हैं कि बहुत सारे मज़ामीन इस दुआ में ज़िक्र हुए हैं, तो आप ये बयान फरमाइए कि किस तरह के मज़ामीन जो हैं इस दुआ में ज़िक्र हुए हैं।
जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत सवाल है और एक ऐसा सवाल है कि जिसके जवाब में अगर हम तफसील से चले गए तो ज़ाहिर एक टॉक शो किफ़ायत नहीं करेगा, क्योंकि एक दुआ और वो भी बिलखसूस दुआ अरफा जो एक तूलानी दुआ है और वो भी एक मासूम की जानिब से सादर हो रही है, उसके मज़ामीन के सिलसिले में हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। और बिलखसूस आप अगर मज़ामीन के सिलसिले में और उनकी अहमियत के सिलसिले में अगर आप इस नुक्ते की तरफ तवज्जो करें तो ये बात हमारे लिए रोशन हो जाती है कि दुआ के अंदर कितने अजीम और आला मतालब और मआरिफ मौजूद हैं। देखें, दुआ इमाम अलैहिस्सलाम जब दुआ तिलावत फरमाते हैं तो किसकी बारगाह में होते हैं? ज़ाते परवरदिगार की बारगाह में होते हैं। यानि गुफ्तगू किस ज़ात से है? परवरदिगार की ज़ात से है। यानि यहाँ अच्छा, जब इमाम अलैहिस्सलाम आम लोगों से महव गुफ्तगू होते हैं, उनके आगे अगर मआरिफ को, उनके आगे अगर मज़ामीन और मतालब को बयान करते हैं तो लोगों की सतह को देखा जाता है। अच्छा, सतह के एतबार से उनके ज़हनी सतह के मुताबिक इमाम अलैहिस्सलाम मआरिफ को भी नीचे लेकर आते हैं लोगों की सतह के मुताबिक, ताकि वो समझ पाए। लेकिन यहाँ दुआ किसे कहते हैं? दुआ वो मंजिल है जहाँ खुद एक तरफ से इमाम मासूम हैं, हुज्जत इलाही हैं, उस तरफ से ज़ाते परवरदिगार है। तो इमाम अलैहिस्सलाम जब ज़ाते परवरदिगार की बारगाह में आकर अगर कोई चीज़ बयान कर रहे हैं, उसकी हमद कर रहे हैं, खुदा की सिफात बयान कर रहे हैं, तो वो अपने आली तरीन मज़मून के साथ बयान कर रहे हैं। जहाँ इमाम अलैहिस्सलाम को ये ज़रूरत पेश नहीं आ रही किसी एतबार से उसकी सतह को, उसके मोहतवा को, उसके मज़मून के कैफियत को नीचे लेकर आए, नहीं, ज़ात इलाही की बारगाह में। तो लिहाजा अगर हमें आली तरीन अकायद, मआरिफ और मज़ामीन देखने हैं तो दुआओं की तरफ आना पड़ेगा। कुरान मजीद के बाद अगर हम दुआओं को देखें तो आली तरीन मआरिफ अगर बयान हुए हैं तो वो इस दुआ के अंदर हैं, जहाँ गुफ्तगू, जहाँ मुनाजात फ़कत इंसान कामिल, इंसान मासूम, हुज्जत इलाही और ज़ात परवरदिगार के दरमियान है। तो लिहाजा इस तनाजुर में अगर हम इस दुआ को देखें तो मैं फ़कत चंद महवर को इशारे के तौर पर बयान करूँगा फहरस्त के उनवान से, जो कि हम तफसील में नहीं जा सकते कि इस दुआ के अंदर किस तरह के मज़ामीन मौजूद हैं। अगर हम मौजू एतबार से देखें और इस दुआ की तहलील और तज्ज़िया करें तो तकरीबन 5-6 मौजू हमें इस दुआ के अंदर नज़र आते हैं। एक मौजू जो आली तरीन मौजू है वो खुद खुदा शनासी का मौजू है। यानि अगर खुदावंद मुताल की सिफात, अफ़ाल और ज़ाते परवरदिगार की मारिफत अगर हमें पैदा करनी चाहिए और उसके सिलसिले में हमें मारिफ देखने हों तो दुआओं की तरफ रुजू करें, और बिलखसूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये दुआ, दुआ अरफा, जिसके अंदर इमाम अलैहिस्सलाम खुदा शनासी का बेहतरीन दर्स दे रहे हैं। और इसी तरह दूसरा महवर इसके अंदर जो है वो इंसान शनासी है। अच्छा, खुदा शनासी के अंदर भी अगर हम तफसील से थोड़ा सा फहरस्त के उनवान से आगे चलें तो भी खुदा शनासी के अंदर इमाम अलैहिस्सलाम खुदा के अफ़ाल को बयान कर रहे हैं, जहाँ पर खुदा की राज़िकियत का बयान है, मालिकियत का बयान है, खुदा की खालिकियत का बयान है। इसी तरह खुदावंद मुताल की नेमतों का इमाम अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं, और वो तमाम अल्ताफ़ इलाही जो अंबिया के हक़ में हुए, वो नेमतें जो इंसान के हक़ में खुदा की जानिब से हुई। और इसी तरह मसलन एक जुमला मैं अगर इसी नमूने के तौर पर बयान करूँ उसी दुआ का, कि इमाम फरमाते हैं कि फ़अय्यु निअमिक या इलाही उहसी अददन व ज़िक्रा, कि तुम्हारी नेमतों में से किस नेमत को मैं गिनती करूँ, किस नेमत को मैं शुमार करूँ, उसका ज़िक्र करूँ। यानी इतनी नेमतें हैं ज़ाते परवरदिगार की इंसान पर कि किसी एक नेमत को इंसान आकर उसका ज़िक्र करे, ज़िक्र नहीं कर सकता, इतनी अज़मत है उन नेमतों की। जी हाँ, और इसी तरह किन किस नेमत का मैं शुक्रिया बजा लाऊं, आगे इमाम फरमाते हैं यानी इतनी नेमतें हैं ज़ाते परवरदिगार की। तो ये नेमतों का तज़किरा इमाम करते हैं, सिफ़ात के तज़किरे में जब आते हैं तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इमाम अलैहिस्सलाम खुदा की सिफ़तों को बयान करते हैं, हमद बयान करते हैं, खुदा की जवादियत रहमानियत को इमाम अलैहिस्सलाम सिफ़ात के दायरे में बयान करते हैं। इस तरह फिर जो है मसलन एक मरतबा इसी दुआ का ऐसा आता है कि इमाम के रुखसार पर आंसू टपक रहे होते हैं, इमाम गिरिए की हालत में होते हैं बारगाह इलाही में और खुदा की सिफ़ात को इस तरह बयान कर रहे होते हैं कि या असमा सामईन, या अबसर नाज़रीन, या असरा अल हासिबीन, यूँ इस तरह खुदा की सिफ़ात को कि ए वो के जो देखने वालों में सबसे ज़्यादा देखने वाला है, जो हिसाब करने वालों में सबसे ज़्यादा सरी और तेज़ जल्दी हिसाब करने वाला है। तो लिहाजा यूँ खुदावंद मुतआल की सिफ़ात अफ़आल को यानी खुदा शनासी के महवर में बयान कर रहे होते हैं। फिर दूसरा महवर अगर हम इशारा करें मुख्तसर तो वो इंसान शनासी का एक महवर है, यानी अगर इंसान के सिलसिले में कि इंसान की खसूसियात क्या हैं, इंसान की मादी खसूसियात क्या हैं, इंसान की मानवी खसूसियात क्या हैं, इंसान की क्या ज़रूरियात हैं, हत्ता इमाम अलैहिस्सलाम ने इंसान के इस मादी बदन के आज़ा की तरफ इशारा किया है कि खुदा ने किस तरह इंसान के वजूद में नज़्म बरकरार रखा है, किस तरह उसकी नेमतें इंसान के इस मादी वजूद पर हैं। तो ये सारी गुफ्तगू जो है हत्ता वो इंसान की खिलकत के जो मराहल है इमाम ने उसकी तरफ इशारा किया है, तो पूरी एक इंसान शनासी की गुफ्तगू इस दुआ अरफा के अंदर आपको नज़र आएगी। और तीसरा जो महवर है इस दुआ के अंदर रहनुमा शनासी का महवर है कि रहनुमा शनासी में पैगंबर गिरामी इस्लाम के सिलसिले में इमाम अलैहिस्सलाम तज़किरा करते हैं और इसी तरह आइमा के बारे में तज़किरा करते हैं। पैगंबर गिरामी इस्लाम के बारे में जब तज़किरा होता है तो वहाँ पर पैगंबर गिरामी इस्लाम की सिफ़ात को बयान करते हैं, अब्दियत की सिफत को बयान करते हैं, उनकी रिसालत नबूवत को बयान करते हैं। और इसी तरह मसलन दुआ के अंदर जो दीगर सिफ़ात हैं पैगंबर गिराम इस्लाम की कि वो मखलूकात में बेहतरीन मखलूक है, इसी तरह मसलन खुदावंद मुताल की वही के अमानतदार हैं, इसी तरह बशीर हैं बिशारत देने वाले हैं, इस तरह मुख्तलिफ सिफ़ात और औसाफ से तौसीफ़ करते हैं पैगंबर गिराम इस्लाम की और यूँ वो अंबिया अलैहिस्सलाम का तस्करा आ जाता है। और ख़ुद आइमा अलैहिस्सलाम की सिफ़ात को बयान करते हैं इमाम के, ये आइमा कौन है, तय्यबीन हैं, ताहिरीन हैं, ये मुंतजबीन हैं, इस तरह बहुत सारी सिफ़ात के ज़रिए खुद आइमा का तज़किरा इस दुआ के अंदर आपको मिलेगा, यानी नबूवत और इमामत के सिलसिले में आपको बेहतरीन मदालिब इस दुआ अरफा के अंदर नज़र आएंगे। और इसी तरह फिर कुरान शनासी का पूरा एक महवर इस दुआ अरफा के अंदर है कि इमाम ने कुरान की जामियत को इसके अंदर बयान किया है, कुरान के नूर होने को इमाम ने बयान किया है, और इसी तरह कि ये कुरान जो है वो फुरक़ान है कि हक व बातिल के दरमियान इंसान के लिए एक राह तमीज़ है, राह तशखीस है कि इंसान कुरान के ज़रिए हक व बातिल के दरमियान एक फ़र्क डाल सकता है। तो लिहाजा ये और एक दूसरा जो महवर इसके अंदर दुआ अरफा के अंदर है वो हस्ती शनासी का महवर है, यानी इस निज़ाम खिलकत की हकायक को पहचानना कि खुदावंद मुताल ने इस निज़ाम खिलकत को किस तरह जो है वो रखा है, इसके जो मौजूदात हैं, इसके जो हकायक हैं वो किस तरह है। तो इमाम ने उनकी खसूसियात की तरफ और उनकी सिफ़ात और ख़ासियतों की तरफ इशारा किया है। तो यूँ अगर हम मौजूई एतबार से दुआ अरफा का मुतालिया करें तो हमें ये 6-7 महवर अच्छे अंदाज से नज़र आते हैं, और इसी से आप ख़ुद इसी दुआ की अज़मत को भी नज़र में रखें कि मज़ामीन के एतबार से इमाम ने कितने महवरों को, कितने मतालिब को इस दुआ के अंदर बयान किया है। और इसी तरह फिर एक महवर जो इसी दुआ के अंदर है वो माद शनासी का महवर है, क़यामत शनासी का महवर है। मतलब क़यामत शनासी के हवाले से अगर मैं एक जुमले की तरफ इशारा करूँ जिस दुआ के अंदर है कि इमाम फरमाते हैं कि इलैक मरद्दी, यानी वो तमाम इंसान शनासी के सिलसिले में गुफ्तगू करते करते इमाम फरमाते हैं कि मेरी बाज़गश्त, मेरा पलटना भी किसी की तरफ है, तेरी तरफ है। बस आगाज़ भी यानी इंसान के सिलसिले में ज़ात परवरदिगार है, इस निज़ाम हस्ती के सिलसिले में ज़ात परवरदिगार है, वही मबदा है, और इंतहा और आखिरी जो मकसद है इंसान का वो भी क्या है, वही ज़ात परवरदिगार है। तो लिहाजा आली तरीन मतालिब जो हैं इमाम अलैहिस्सलाम ने इस दुआ अरफा के अंदर तबीन किए हैं, और ये बहुत सारे ऐसे महवर हैं कि जिसके सिलसिले में आपको एक बेहतरीन मतालिब दुआ अरफा के अंदर मिलेंगे।
माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह, नहायत ही उम्दा तरीके से आपने दुआ अरफा के मज़ामीन और ख़ुद दुआ का जो असली माना है, जो कि आम हम लोग ये कहते हैं कि फ़कत तलब करना है, लेकिन आपने आज वाज़े किया कि फ़कत तलब करना नहीं बल्कि अपने इज्ज को ज़ाहिर करना और बारगाह इलाही में उन्स पैदा करना है। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपने देखा कि बुज़ुर्गवार ने दुआ अरफा के मज़ामीन और ख़ुद मुतलकन दुआ की अहमियत के बारे में गुफ्तगू की, और ये बयान फरमाया कि अगर इस तमाम बयानात का खुलासा किया जाए तो उसूल दीन और फुरूए दीन की अगर शरह देखनी है और अगर तफसीर देखनी है तो दुआए अरफा की शक्ल में मौजूद है। चूँकि हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, अगले प्रोग्राम में नए मेहमान और नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।